पृथ्वी नक्श का पीछा कर रहा था। नक्श जैसे चालाक इंसान का सच सामने लाना इतना आसान नहीं था। जब से नक्श अभिमन्यु के चंगुल से छूटा था, तब से वो इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। जब नक्श पूरी तरह श्योर हो गया, तब वो देर रात हॉस्पिटल के एक VIP रूम के अंदर घुसा। पृथ्वी ने वार्ड बॉय के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को मास्क से छुपा रखा था, इसलिए उसका उस एरिया में जाना आसान था। जैसे ही नक्श कमरे के अंदर घुसा, सफाई के बहाने पृथ्वी उसके पीछे आ गया। हालांकि नक्श उसके सामने मौजूद शख्स से तब तक कोई बात नहीं कर रहा था जब तक वार्ड बॉय वहां काम कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब पृथ्वी डस्टबिन खाली करके वहां से निकले। इधर नक्श जिससे मिलने आया था, उसे देखकर पृथ्वी के होश उड़ गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स नक्श की मदद कर सकता है। सामने हॉस्पिटल बेड पर प्रणाली थी, जिसकी हालत देखने में काफी हद तक सही लग रही थी। पृथ्वी प्रणाली को पूरे 2.5 साल बाद देख रहा था। अभिमन्यु ने उससे पूरी तरह रिश्ते तोड़ दिए थे। उसका इलाज भी राजवंश एम्पायर के दिए हुए फंड से हो रहा था, इसीलिए अभिमन्यु और पृथ्वी दोनों ने ही उसके बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं समझा था। प्रणाली कपूर, पृथ्वी मन ही मन बड़बड़ाया। यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये लड़की ये सब करने की हिम्मत रखती है। इसके दिमाग से अभी भी सर के नाम का भूत उतरा नहीं है। पृथ्वी डस्टबिन को पकड़े हुए गुस्से में मन ही मन बड़बड़ा रहा था। तभी उसके ज्यादा देर वहां रुकने पर नक्श ने इरिटेट होकर कहा, अब क्या पूरा दिन सिर्फ ये कचरे की बाल्टी खाली करने में लगाने वाले हो? जल्दी निकलो यहां से, मुझे मिस कपूर से बात करनी है। पृथ्वी ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। वो वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन फिलहाल पृथ्वी के लिए सबूत जुटाना ज्यादा जरूरी था। उसने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और डस्टबिन के पास लगे कैबिनेट में उसे अच्छे से सेट करके छुपा दिया। डस्टबिन उठाकर पृथ्वी जल्द ही वहां से निकल गया। वो जानता था कि नक्श ज्यादा देर तक प्रणाली के साथ नहीं रुकने वाला है। एक बार नक्श के वहां से निकलते ही वो अपना मोबाइल वापस ले आएगा। जैसे ही पृथ्वी कमरे से बाहर गया, नक्श ने प्रणाली से कहा, तुमने अच्छा काम किया था। एक बार के लिए मुझे लगा कि इशिका अभिमन्यु चाचू के बारे में ऑनलाइन क्यों सर्च करेगी। बिना उसके सर्च किए तुम्हारा वो फेक आर्टिकल सामने नहीं आने वाला था। उसने मुझे कॉल किया था, उसे चाचू पर शक है कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। ऊपर से मैंने उसके दिमाग में ये भी डाल दिया कि चाचू की वाइफ लंदन में रहती है। हालांकि इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, पर कुछ पाने के लिए कुछ बड़ा दाव पर लगाना पड़ता है। बोलते हुए नक्श के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। प्रणाली के चेहरे के भाव गंभीर थे। वो गुस्से में तेज सांसें ले रही थी। आज भी उसका बर्ताव बिल्कुल नहीं बदला था। वो अभिमन्यु को लेकर बहुत पजेसिव थी। जब भी प्रणाली अभिमन्यु और इशिका को एक साथ सोचती तो उसका खून खौलने लगता था। प्रणाली ने नक्श की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, वो मेरे अभिमन्यु को डिजर्व नहीं करती है। मेरा यकीन करो, उसने झूठ बोला था। उसने मेरे अभिमन्यु को अपने जाल में फंसाया है। वो तो हमेशा से ही मेरा था। उसने मुझे ही प्रॉमिस किया था। हम बचपन में साथ में एक तहखाने के अंदर थे। उसने तब मुझे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे। बीच में वो लड़की आ गई। प्रणाली की मेंटल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो गई थी, लेकिन जब भी बात अभिमन्यु की आती तो वो इस तरह पागलों की तरह बिहेव करने लगती थी। नक्श ने जल्दी से उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें खुद को शांत रखना होगा। तुमने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है प्रणाली, लेकिन जब भी चाचू का जिक्र होता है तुम फिर से अपना आपा खो देती हो। थोड़ा पेशेंस रखो, वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। तुम्हारे रास्ते की मुसीबतें शिका है और मैं जल्द ही उसे चाचू और तुम्हारी लाइफ से दूर ले जाऊंगा, पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि तुम पूरी तरह रिकवर करो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। नक्श काफी शांत तरीके से प्रणाली को समझा रहा था। उसने प्रणाली को पानी पिलाना चाहा, लेकिन प्रणाली ने ग्लास को फेंक दिया। कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। नक्श ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी अगर प्रणाली ऐसे ही बर्ताव करती रही। कैसे खुद को शांत रखूं? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब तुम उन दोनों को साथ देखते हो? तुम दोनों का रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि मैं तो उसे बचपन से प्यार करती हूँ। उसके चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं अपने पैरों पर चल तक नहीं पाती हूँ, और ये सब उस इशिका की वजह से हो रहा है। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं उस लड़की की जान ले लेती, प्रणाली ने गुस्से में तेज सांस लेते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मैं उसे तुमसे दूर ले जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि चाचू फिर से तुम्हारे पास आए तो तुम्हें नॉर्मल बिहेव करना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम अब पूरी तरह ठीक हो, नक्श ने प्रणाली की आंखों में देखकर कहा। इस बार उसका समझाना काम कर गया। प्रणाली थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन नक्श भी अच्छे से जानता था कि प्रणाली के सामने अगर अभिमन्यु और ऋषिका दोनों का एक साथ जिक्र हुआ तो वो फिर से बेचैन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, तुमने अच्छा काम किया है, और आई मस्ट से इस बार हमारा प्लान काम भी करेगा। मैं सुबह तक वापस गोवा जाऊंगा और इशिका को तुम्हारे और चाचू के फोटोज दिखाने वाला हूँ। उसके बाद उसके लिए यकीन करना आसान होगा कि तुम ही चाचू की वाइफ हो। इशिका को कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो राधिका सिंघानिया और केशव सिंघानिया के बारे में भी भूल चुकी है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं इशिका को सबसे दूर ले जाऊंगा, नक्श ने अपना आगे का प्लान बताया। कुछ पल रुककर उसने मुस्कुराते हुए प्रणाली के कंधे को सहलाया और कहा, टेक केयर प्रणाली, आगे के प्लान पर काम करना है, मुझे जाना होगा। नक्ष ने जल्द से जल्द प्रणाली से पीछा छुड़ाना सही समझा। वो जाने के लिए पलटने लगा, तभी प्रणाली ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। नक्ष कुछ कह पाता उससे पहले प्रणाली बोली, मुझे पागल समझने की गलती मत करना, खुद का तो प्लान अच्छे से सेट कर रखा है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? अभिमन्यु को मेरे पास कौन लेकर आएगा? वो उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, ऐसे में उसका मुझे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। नक्ष ने आईज रोल की और फिर प्रणाली की तरफ पलटकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं दुनिया के सामने इशिका को डेड साबित कर दूंगा और ऐसे में तुम चाचू की लाइफ में वापस जा सकती हो। तुम्हारे डिस्चार्ज का मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। हालांकि तुम्हारी एक दो रिपोर्ट्स अभी भी नॉर्मल नहीं है, पर मैंने अथॉरिटी के साथ सेटलमेंट कर दिया है। सिर्फ मेरे प्लान बताने से ही कुछ नहीं होगा प्रणाली, तुम्हें अभिमन्यु के सामने केयरफुल बिहेव करना होगा। प्रणाली ने उसकी बात पर हामी भरी। नक्ष प्रणाली से पीछा छुड़ाकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली। ये लड़की सच में पागल है। आज पहली बार मुझे चाचू पर दया आ रही है, जो इन्होंने इस लड़की को इतने साल तक झेला। मैं इशिता को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अभिमन्यु राजवंश मिलता है या नहीं। तुम अपना काम पहले ही कर चुकी हो, नक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा।
अचानक उसे उस दिन की याद आ गई जब इशिका के एक्सीडेंट के बाद उसे यहाँ लाया गया था। उसे प्रणाली ने देख लिया था। प्रणाली ने अपनी मदद के लिए कई लोगों को कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया सिवाय नक्ष के। वो उसके कहते ही तुरंत वहां पहुंच गया था। यहाँ तक कि प्रणाली ने छुपकर डॉक्टर और अभिमन्यु की बातें सुनी थी और इस बात का पता लगाया था कि इशिका प्रेग्नेंट है। दवाइयाँ बदलने और डॉक्टर को गलत इन्फॉर्मेशन देने में भी प्रणाली ने नक्ष की काफ़ी मदद की थी। इन सब के बदले उसकी यही शर्त थी कि नक्ष इशिका को हमेशा के लिए अभिमन्यु की ज़िंदगी से दूर ले जाए और वो कुछ न कुछ ऐसा इंतज़ाम करे जिसके बाद अभिमन्यु हमेशा के लिए उसका हो जाए। नक्ष का प्रणाली से काम पूरा हो चुका था, इसलिए उसे अब उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने जाने से पहले इधर उधर देखा और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही पृथ्वी बाहर निकल कर आया। वो वापस किसी काम के बहाने प्रणाली के कमरे में गया। फर्श पर कांच टूटा हुआ था, ऐसे में प्रणाली को पृथ्वी पर डाउट भी नहीं हो सकता था। पृथ्वी ने कांच साफ किया और बहुत ही सफाई से अपना मोबाइल निकाल लिया। जब उसने फुटेज देखी तो वो दंग रह गया। ये लोग पता नहीं कब से प्लानिंग कर रहे हैं। तो नक्ष का अगला प्लान इशिका मैम को प्रणाली और सर की फोटोग्राफ्स दिखाना है। ये वीडियो मैं सर को ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि वे मिस सिन्हानिया को दिखाकर उन्हें ये साबित कर सकें कि नक्ष किस हद तक गिर गया है। पृथ्वी ने बिना देर लगाए वो फुटेज अभिमन्यु को भेज दी। उसके बाद वो वापस नक्ष के पीछे चला गया। दूसरी तरफ आशी से सगाई होने के बाद अभिमान बुरी तरह टूट गया था। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो राजवंश मेंशन में कदम भी रखे। अपना दिल हल्का करने के लिए वो अपने ऑफिस आशिका के पास पहुँचा। अभिमान सुबह आशिका को इमरजेंसी का बोलकर निकला था और वो पूरे दिन से गायब था। आशिका के दरवाज़ा खोलते ही अभिमान उसके गले लग गया। आशिका ने महसूस किया कि उसका शरीर तेज़ बुखार से तप रहा था। आशिका जल्दी से अभिमान से अलग हुई और बोली, तुम्हें बहुत तेज़ फीवर है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। बोलते हुए आशिका की नज़र अभिमान की आंखों की तरफ गई, जो बेहद लाल थी। क्या तुम रो रहे थे? आशिका ने धीमी आवाज़ में पूछा। जिस हालत में अभिमान उसके पास आया था उससे साफ था कि इस पूरे दिन में उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ होगा, जो कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। अभिमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। न जाने क्यों उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने बिना कुछ कहे नामी सिर हिला दिया। रूम में चलते हैं, आशिका ने धीरे से कहा और फिर अभिमान का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में लेकर गई। वो अभिमान को लिटाना चाहती थी, लेकिन अभिमान फिर से उसके गले लग गया। उसका इस तरह बार बार करीब आना आशिका को अंदर से एक अजीब सा एहसास दे रहा था। उसने अपनी मुठ्ठियों को कसकर बंद कर लिया। आशिका इस फीलिंग को इग्नोर करना चाहती थी। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हें फीवर है और तुम काफी ब्रोकन लग रहे हो, सब ठीक है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है अभिमान, आशिका ने दोबारा पूछा, इस उम्मीद के साथ कि अभिमान उसे कुछ बताएगा। अभी कुछ मत पूछो, बस मेरे करीब रहो। ऐसा समझ लो कि इस दुनिया में जहाँ मेरे जैसे शख्स के लिए कहीं भी शांति नहीं है, उसे तुम्हारी बाहों में आकर सुकून मिल रहा है आश, अभिमान ने अपनी गहरी धीमी आवाज में कहा। अभिमान की बात सुनकर आशिका के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसका कारण वो खुद नहीं समझ पाई। तुम पूरे दिन से गायब थे। अगर वो इंसान मुझे लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा दिनों तक उससे भाग नहीं पाऊंगी, मैं चली जाती हूँ उसके पास, आशिका बोली। न जाने क्यों उसने अभिमान की खुशी के लिए खुद को दाव पर लगाने का सोचा, जबकि उनके बीच तो किसी तरह का रिश्ता भी नहीं था। आशिका के मुंह से आकाश के पास जाने की बात सुनते ही अभिमान तुरंत उससे अलग हुआ और उसके होठों पर उंगली लगाकर बोला, श्श, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे होते हुए वो तुम पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। लेकिन मेरी वजह से तुम बेवजह सफर कर रहे हो और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, आशिका ने परेशान स्वर में कहा। मैं तुम्हारी वजह से सफर नहीं कर रहा हूँ। आशी और मेरी शादी काफी टाइम पहले हो चुकी थी, जो कि रचित की स्टूपिडिटी की वजह से हुई थी। मुझे लगा कि मैं उससे डिवोर्स मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन अब वे तुम्हारा नाम लेकर मुझे इस शादी को निभाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। डोंट वरी, तुम खुद को ब्लेम मत दो। वैसे भी आशी से पीछा छुड़ाना आसान कहाँ था, अगर होता तो अब तक मैं उससे अलग हो चुका होता। मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि आज हमारी इंगेजमेंट थी और दो दिन बाद शादी है। अभिमान ने आशिका को एक सांस में सब कुछ बता दिया। आशिका के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। वो समझ सकती थी कि बिना प्यार के जबरदस्ती किसी शादी में रहना कैसा होता है। यही वजह थी कि वो खुद आकाश से भागती फिर रही थी। आशिका को उदास देखकर अभिमान बोला, मैंने मुश्किल से ही तुम्हारे फेस पर स्माइल देखी है। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी स्माइल नहीं कर सकती? हालांकि ऐसे मौके पर आशिका के लिए स्माइल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अभिमान की खुशी के लिए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अभिमान के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। तभी अचानक उसे अपने आसपास धुंधला दिखाई देने लगा। अभिमान ने पलके झपकाकर ठीक से देखने की कोशिश की। उसके आसपास सब घूम रहा था। अगले ही पल अभिमान आशिका के कंधे पर बेहोश पड़ा था। वहीं उसे ऐसे हाल में देखकर आशिका घबरा गई। सगाई करके बंदे को बुखार हो गया है तो सोचो कि शादी के बाद क्या होगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।